13,54,000,
जी
4,76,000,
ठीक है,
9,71,500,
जी और
बस कितना हुआ?
हो गया। हाँ तो ये कुल हुए 1,82,30,400 तुमान।
खुदा बरकत दे। और
कुछ नकद भी है?
नहीं, सारे चेक हैं जिन्हें कैश होना है। अगर इस कारखाने को हम वसात दें तो साथ ही साथ एक ढंग का सिलाई का कारखाना भी खोल लें, तो इस सूरत में सिलाई से खूब आमदनी हासिल होगी।
इंशाल्लाह, जल्दी ना करना, एक एक करके सारे काम अपने वक्त पर हो जाएंगे। जाना है क्या?
हाँ जाऊंगा। कोई काम तो नहीं?
सबको सलाम कहना। बैग भूले जा रहे हो?
मैं अभी आ रहा हूँ।
घर नहीं जा रहे हो क्या?
नहीं, किसी से मिलना है।
ना जाते तो बेहतर था। ये मोहम्मद अमीर का मसला।
मोहम्मद अमीर के लिए नहीं जा रहा हूँ। उसके भाई जवाद का फोन आया था, उसने मदद मांगी है। घर बीवी के नाम है और वो बेचने पे तैयार नहीं।
ओह, ये तो बहुत दिनों तक चलेगा।
मैं जाकर जलाल से बात करता हूँ, बल्कि उसकी रजामंदी लेता हूँ।
कोई फायदा नहीं है, उसके ताल्लुकात तुमसे कहाँ अच्छे।
ये तो जानता हूँ, लेकिन जवाद इसरार कर रहा था। लगता है कोई उसकी मदद पे तैयार नहीं।
ये तो पता है, इसलिए कि उस शख्स की फितरत ही खराब है। सब जानते हो कितना वाहियात इंसान है, उसका भाई भी जानता है, अच्छी तरह जानता है। लेकिन अलगरीक को यह तशब्बत बिकुल हशीश, यानी डूबते को तिनके का सहारा चाहिए।
वाह भाई वाह, तो हम हशीश हो गए हैं।
हशीश यानी तिनका, डूबते को तिनके का सहारा।
हम तिनके से भी बदतर हो गए।
जाइए जाइए साहब, जाइए।
कारोबार में अपना और गैर नहीं देखा जाता। मैं जानता हूँ चेक कैश कराने की तारीख में अभी 3 दिन बाकी हैं। मैंने सिर्फ याद दहानी कराना चाहा ताकि तुम ये ना कहो कि बाद में हमको बताया नहीं और चेक पहुँच गया और पैसे नहीं थे। तुम खुद समझ लो। बस नहीं, इतनी बहस ना करो। खुदा हाफिज़। वाह भाई वाह, आखिरकार आ ही गए तुम।
सलाम अलैकुम।
कैसा सलाम, कैसी खैरियत, ऐसे मदद की जाती है?
सबसे पहले तो सलाम का जवाब देना वाजिब है, और दूसरे कैसी मदद?
यानी वो भी नहीं याद है तुम्हें? ये तो छोड़ो कि हम एक ही जगह काम करते हैं और पड़ोसियों का हक होता है एक दूसरे पे। अब शायद तुम अपने भाई की जो हरकत है उसके बारे में बात करने आए हो।
नहीं, तुमने अपने भाई के साथ जो किया उसके बारे में बात करने आया हूँ।
मैं जानता हूँ, वो भी अंदर है। देखा मोहम्मद अली साहब, देख रहे हो ना कैसी कैसी बीवियां हैं। खुशकिस्मत हो जो अब तक कुंवारे हो।
और तुम तो उसके भाई हो, क्यों पीछे हटे?
तुम तो कारोबारी आदमी आए हो, फिर इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? बाजार के ये कानून है, इधर से खरीदो उधर बेच दो। अगर कोई है जो इस बीच में कोई गलती करे तो उसकी गलती का तावान मैं दूं क्या?
जलाल साहब, कारोबारी की जगह जेल नहीं है। जवाद अंदर रहेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो बाहर रहेगा तो कोशिश करे और पैसे का इंतजाम होगा। और वो तुम्हारा भाई भी है। वो
अगर मैं इस तरह की फजूल खर्ची करता तो 100 दफा दिवालिया हो चुका होता।
मतलब कोई राह नहीं है?
अगर उसके बारे में ज्यादा परेशान हो तो तुम अपने सरमाए से थोड़ी कुर्बानी दे दो ना।
अगर मैं कर सकता तो जरूर करता, तुम्हारे अकाउंट में डाल देता और खत्म।
अब तुम मेरे सामने तो कम से कम रोना मत रो।
इंसान किसी ऐसे के सामने रोना रो जिसके सीने में दिल हो। एक बंदे खुदा को जरूरत थी, इसलिए मेरे हाथ खाली हो गए।
कौन
था? कोई बंदे खुदा। अब मैं उससे क्या कहूँ?
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम।
मेरा मामला हथेली की तरह साफ है। इस तरह उससे कहो खुदा ने उसकी रोजी कहीं और रखी है। मैं भी कितना बेवकूफ की समझा कि माफी मांगने आया हो।
वो किस लिए?
उसी हरकत के लिए जो तुम्हारे भाई ने की है।
बचपना दिखाया, लेकिन खैर ऐसा बुरा भी नहीं किया।
मैं जाकर शिकायत भी कर सकता था, लेकिन फिर सोचा कि अच्छी बात नहीं है, खासतौर पर इसलिए भी कि अब ज्यादा करीबी रिश्तेदार होने वाले हैं।
जलाल, तुम अब ख्वाब देखना छोड़ दो, लगता है कुछ ज्यादा ही खुशफहमी हो तुम।
हम कोई गैर शरी काम तो नहीं करने जा रहे, तुम भी नहीं रोक सकते मेरा रास्ता। अगर ज्यादा तेजी दिखाई तो जाकर तुम्हारे भाई की शिकायत करूंगा, जेल में डलवा दूंगा, पड़ा रहेगा वहीं और कभी नहीं निकल पाएगा।
तुम मेरे भाई को जेल में डलवाओगे? कोई नहीं, तुम डलवाओगे। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी तो औकात ही नहीं, तुमसे बड़े बड़े भी मेरे किसी भाई को तिरछी नजर से भी नहीं देख सकते। तुम्हारी तो ये औकात है कि दो चार नोट देख के तुम्हारे मुंह में पानी भर जाता है। तुम्हें तो मैं बता दूंगा, बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, तुम्हारी हैसियत तो कचरे की बाल्टी की तरह भी नहीं है, समझे?
मोहम्मद अली साहब, गलत आदमी से भिड़ गया हो, वो भी गलत मौके पे। अब इसके बाद फिर मैं समझ लूंगा तुम्हें। ये इसलिए बता रहा हूं कि कभी औंधे मुंह गिरना तो समझ जाना कि कहां से चोट लगी है।
ये लो 1.5 लाख तुम्हारा नकद, तुम्हारे नुकसान से ज्यादा है, बाकी जो है सदके में डाल देना। सदके का संदूक देखा होगा ना, अपनी उस जेब से निकाल के दूसरे में डाल देना।
इतने फजूल खर्च ना बनो, पैसे करो डालते हो मुझ पे, लो उठाओ इसको ले जाओ।
अजीब लकड़ियां हैं, माचिस की तिलियों की तरह बिल्कुल सूखी सूखी।
अब देखिए कैसी आग भड़काता हूं।
बस अपना ख्याल रखना, खुद को जलाना
नहीं, परेशान ना हो।
वाह भाई वाह, शाबाश, बहुत काम
कर रहे हो। अम्मी जान,
अब बस में आपको नहीं लगता कि कुछ कम है?
नहीं बेबी, पिछले साल इससे कम था, लेकिन कोई मुश्किल नहीं हुई।
इस साल का मामला पिछले साल से अलग है, बहुत ज्यादा तेज आंच की जरूरत है।
हाँ बेटा ठीक कह रहे हो, 9 किलो तो गंदम ही ज्यादा है।
और हाँ देखिए बीबी, मैं हजरत अब्बास की कसम इस काम का उस्ताद तो नहीं हूँ, भाईजान को फोन करके और लकड़ियाँ मंगवा लें।
ठीक है, मैं भी परेशान थी बेटा, अभी फोन करती हूँ।
परेशानी किस बात की बीवी जान, अभी मैं जिंदा हूँ।
तुमको क्या हुआ काजम? अरे भाई, एक देख पकाने के लिए कितनी जरूरत?
कितनी आज की जरूरत है मुझे मालूम है मेरे भाई, तुम जाओ अपना काम करो, जाकर बाकी चीजें लाओ।
ठीक है।
आपका मुखलिस अहमद साहब।
शुक्रिया, आओ आओ अंदर आओ।
क्या बात है, तुम भी मुझसे तेजी करने आए हो?
तुम्हारे साथ तेजी करने का कोई फायदा नहीं है, तुम आदमी तो हो नहीं।
काम बोलो।
तुमसे क्या मतलब, ये तुम्हारी दुकान है क्या? ये क्या कह रहे हैं अहमद साहब?
इन बातों के पीछे और कोई बात है? जी फरमाइए, आप कुछ कह रहे थे।
असल में बाबा जान के पुराने कारखाने को गोदाम बना दिया।
खुदा उनकी मगफरत करे,
खुदा आपके मरहूमिन की मगफरत करे, लेकिन गोदाम बनाने के लिए जगह जरा बड़ी और महंगी है, इसलिए सोचा कि अगर कोई ग्राहक मिल जाए तो बता।
ये हुई ना अकलमंदी की बात, बहुत अच्छे, मैंने वो जगह देख रखी है, बहुत जोरदार जगह है, वो जगह भी अच्छी है, इलाका भी अच्छा है।
मैं अहमद साहब से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं।
मैंने तुम्हारे नुकसान की तो बात नहीं की, मैं तुम्हारी तारीफ ही तो कर रहा हूँ।
आपका इल्तिफात हमारे लिए नुकसानदेह है जलाल साहब।
बहर अगर बेचने का कष्ट हो तो मेरे पास ग्राहक मौजूद है, इसे मेरे हवाले कर दो।
नहीं जनाब, माल और जायदाद तो रही एक तरफ, मैं तो चोर भी तुम्हारे हवाले न करूं।
अब तुम्हारी मर्जी, लेकिन मीरास में जो हिस्सा तुमको मिलने वाला है उससे तुम खुद वहां कारखाना खोल सकते हो, बस थोड़ी सी मरम्मत करवानी पड़ेगी उस जगह की।
वहां की दीवारें तड़फ रही है।
तुम पागल हो, वो पुरानी इमारत है, उसकी नींव बहुत मजबूत है, तो आपका गोला भी उसे गिरा नहीं सकता। ये जो नई नई मशीनें आ गई हैं, इनके जरिए अगर तुम एक शीशे की दीवार खींच दो, इतने कस्टमर आएंगे कि सर खुजाने का मौका नहीं मिलेगा। वो भी बेच सकते हो, रिटेल में भी बेच सकते हो।
जलाल साहब, मुझे 4 पैसे कमाने दोगे या नहीं? कहो तो मैं खुद तुम्हारे लिए गाहक ले आऊं।
मोहम्मद बाकी साहब, बाजार में रकाबत भी बहुत है, धोखाधड़ी भी बहुत है, लेकिन ये मामला ऐसा है जहां मैं धोखा नहीं दे सकता।
احمد صاحب تو ہمیشہ یہاں موجود ہیں۔ تم جاؤ، خوب غور کرو میری باتوں پر، دیکھو تمہارے فائدے میں ہے یا نہیں۔
بہرحال احمد صاحب دھیان میں رکھیے گا، لیکن جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو۔ خدا حافظ۔
خدا نہ خواستہ ہاتھ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا؟
نہیں، بس دو تین ٹانکے لگے ہیں۔
یا الہی، مجھے اب بری خبریں سننے سے پہلے اٹھا لے، کیوں اپنا خیال نہیں رکھتے؟
خدا نہ کرے پھوپھی جان۔
درد بھی ہے؟
نہیں بھائی، کیسا درد، کچھ نہیں ہوا۔ ویسے ڈاکٹر نے موٹے سے سوئے سے ٹانک لگایا۔
ہائے، میں مر جاؤں۔
خدا نہ کرے۔
اچھا، بھابھی کو پتا چلا یا نہیں؟
نہیں، میں اس ڈر سے گھر نہیں گیا، کہیں وہ ایک دم سے گھبرا نہ جائے۔
تو پھر کیا کرو گے؟ آخر کار وہ یہ سب دیکھیں گی یا نہیں؟
مجھے پٹی کھولنی پڑے گی۔ آپ کے پاس بینڈیج ہوگا؟
ہاں بیٹا، قربان جاؤ، ابھی لے کر آتی ہوں۔
ابھی ایک کاش تربوز دیتی ہوں، کھا کر تازہ دم ہو جاؤ گے۔
اگر مجھے روکا نہ گیا ہوتا تو اس کی خیر نہیں تھی، قسمت اچھی تھی بچ گیا۔
ان دنوں اتنا ذہنی تناؤ ہے کہ کوئی بھی فون کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہی لوگ ہیں۔
اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ غلطی سے بھی ادھر نہیں آئے گا
انشاءاللہ۔
نیلوفر
جی،
امی کہہ رہی تھی جنوری میں شب جمعہ کو اچھی تاریخ ہے۔
جانتی ہوں،
لیکن تم اپنی پڑھائی چھوڑنا نہیں۔
پڑھوں گی۔
بھابھی کی طرح تم بھی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنا۔
کون سی بھابھی؟
نرگس بھابھی، اور کون؟
ابھی تک تو تمہاری بھابھی نہیں بنی ہے وہ۔
ارے بھائی، مانتا ہوں رسمی تو واقعی ہے، دل سے تم یا بیوی ہیں جیسے ہم دونوں۔ اس کی دکان کا شیشہ جب میں نے توڑا تو آپ نے تو دیکھا ہی نہیں، ایسے سہم گیا تھا کہ بولتی بند ہو گئی تھی پھوپھی جان۔
تمہاری بلائیں میں لے لوں بیٹا؟ یہ لو بیٹا، یہ زخم والا ٹیپ، لیکن خیال رکھنا پانی میں ہاتھ نہ جائے ورنہ زخم پک جائے گا۔
ٹھیک ہے پھوپھی جان۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، کہاں ہو تم؟
یہیں کہیں آس پاس۔
یہیں اطراف یعنی بتول پھوپھی گھر؟ ہاں، تم وہاں کیا کر رہے ہو؟
میرے لیے پریشان تھے، اپنا ہاتھ دکھانے آیا تھا تاکہ ان کی پریشانی کم ہو جائے۔
اپنا ہاتھ دکھانے یا خود کو دکھانے؟
آپ پریشان مت کیجیے بھائی جان۔
ٹھیک ہے، آج رات گھر نہ آنا، امی تمہارا ہاتھ دیکھ کے شاید پریشان ہو جائیں۔
اتفاق سے میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔
تم جہاں چاہو رات رک جاؤ، صرف پھوپھی اور اشرف کے گھر نہ جانا۔
ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا محمد حسن بھائی کے یہاں۔
ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ
نوشے جان۔
امیر، بتایا نہیں کہ کب حلوہ بنائیں گے آپ؟
بیٹا، پہلے محمد امیر کا مسئلہ تو حل ہو جائے۔ ہاں، وہ کہاں رہ گیا ہے؟
کہہ رہا تھا آج نہیں آئے گا، محمد حسن کہاں جانا ہے۔
اس کی بیٹا عادت ہو گئی ہے کہ ہر رات کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے۔
اب پریشان نہ ہو امی، وہ کسی غلط جگہ نہیں جائے گا۔
بتاؤ بھائی، کچھ اور بتاؤ بابا کے بارے میں۔
ہاں، وہ سال مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہمیں کاروبار میں گھاٹا ہوا تھا، تم تو بہت چھوٹے تھے، لیکن اس کی ایک نشانی بھوک تھی جو برداشت کرنی پڑتی تھی۔ چلو چھوڑو۔
بتاؤ نا بھائی، مجھے مزہ آ رہا ہے۔
ہمارے حالات بہت خراب تھے۔ ایک دن مجھے یاد ہے، دوپہر کو میں اسکول جا رہا تھا، امی مجھے کھانا نہیں دینا چاہتی تھی، مجھے بہت تیز بھوک لگی، میں نے خوب ہنگامہ مچایا، مجھے کھانا چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، اسکول میں دیر ہو رہی ہے، میں بھول نہیں سکتا۔ امی اس وقت سویٹر بن رہی تھی، کہنے لگی تمہیں دکھ نہیں رہا ہے کھانا پک رہا ہے، کھانا پکنے تو دو۔ میں بھی غصے میں تھا، زور سے دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ اسکول پہنچا، بہت تیز بھوک لگی ہوئی تھی۔ کلاس کے بیچ میں پرنسپل نے مجھے بلایا، دروازے پہنچا تو میں نے اپنی امی کو دیکھا، انہوں نے مجھے گلے لگایا اور ایک پنیر روٹی کا رول مجھے دیا۔ امی نے کہا کہ گھر میں کھانا نہیں تھا بیٹا، یہ روکھی سوکھی روٹی کہیں سے مل گئی ہے تاکہ تم بھوکے نہ رہ سکو۔
اچھا، تو کیا چڑھا ہوتا تھا چولہے پہ؟
کھانا نہیں تھا، امی یوں ہی چولہے پر پانی چڑھا دیتی تاکہ پڑوسیوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔
भी कैसे अजीब दिन थे।
उस दिन की पनीर और रोटी का मजा मैं आज तक नहीं भूला, जानते हो। बहुत बहुत शुक्रिया
मोहम्मद हसन, तुम्हारी ये किस्सा कोई अभी तक खत्म नहीं हुई।
क्या करें, इन्हीं किस्सों कहानियों में तो मगन रहना है। ये क्या लाई हो, जब खाना वाना लेके आओ। मेरे खुदा, ये कौन सा गुनाह सरजद हो गया। ये तुम्हारा पेट भरेगा इससे, लो लो खाओ।
ये लो।
बहुत बहुत शुक्रिया।
30-40 दिन गुजर गए और अब तक कुछ भी नहीं हुआ।
तो क्या कुछ होना चाहिए था?
तुम अब ये सवाल कर रहे हो? क्या ये नहीं पता लगना चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है? तुम बहुत होशियार रहना कि कहीं धोखा ना खा जाओ। दूसरी ये कि तुम अभी नौजवान हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तरक्की के लिए मैदान खुला पड़ा है। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, बाकायदे कारखाना खोल लो, खड़े हो जाओ सबके सामने, क्या अच्छा नहीं है।
बात ये नहीं जलाल साहब, लेकिन मैं जितना हिसाब किताब कर रहा हूँ, मेरी बीवी को कुछ नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा
मतलब है कि इतना नहीं होगा कि जिससे कुछ किया जा सके, और फिर न इधर के रहेंगे न उधर के।
अगर डरो तो करोड़ों भी हो तो नुकसान में रहोगे। डरो मत भले आदमी, मुझे को देखो, जीरो से शुरू किया था मैंने। अपने चचा मरहूम की मामूली सी दुकान में ऊपर काम करता था, वो तुम्हारी उन्हीं बुतूल फूफी के शौहर थे। मैंने सर झुका के काम करना शुरू किया, सब कुछ सीख लिया और अब यहाँ हूँ।
तुम्ही को मुबारक हो।
क्या मतलब मुबारक हो, यही कारखाना जो अब मेरे पास है मेरे चचा का था, लेकिन जब वो अय्याशियों में पड़ गए तो यही कारखाना डूबने लगा और मैं भी इसके इंतजार में था। वो मकरूज हो गए थे और मैंने और ऊपर से कर्जा दे दिया उनको। धीरे धीरे इतना कर्जा उनको दे दिया कि पूरे कारखाने का मालिक हो गया। फिर मैंने उनको घुसने नहीं दिया।
बहुत खूब, लेकिन
मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पहुंचा, आहिस्ता आहिस्ता। तुम भी अगर थोड़ी तेजी दिखाओ तो जो कुछ भी पूंजी है उसी से शुरू कर सकते हो, फिर कुछ ताल्लुकात बढ़ाओ, ग्राहक बढ़ेंगे, धीरे धीरे ऊपर चले जाओगे। मैं तुम्हारा खैर खा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी।
ठीक है, जो आप कहें मंजूर, लेकिन
लेकिन लेकिन छोड़ो, अभी से तुम कहना शुरू कर दो ताकि तुम्हारी बात वो मान जाए। तुम जितनी देर करोगे उतने ही पीछे रह जाओगे, और जब होश में आओगे देखोगे कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ दूसरे उठाकर ले गए। जो बचा है वो किसी भी काबिल नहीं है, किसी भी काम का नहीं है, तुम्हारे लिए किसी के लिए भी नहीं।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका?
हाँ, बशर्ते के होशो हवास में रहो।
ओ भाई जान,
चलो आ जाओ, वो जा चुका है आगे। नहीं भाई, तुम इस काम के आदमी नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ इसलिए बनाए गए हो कि दूसरों के सामने हाथ फैलाओ। देखो तो जरा, अभी कुछ भी नहीं हुआ और रंग पीला पड़ गया। उस दिन क्या होगा जब तुम बाकायदे उसके सामने खड़ोगे, उलझोगे उससे। जाओ भाई जाओ, जाओ अपनी मजदूरी संभालो, कहीं तुमको बाहर ना निकाल दें। दो वक्त की रोटी कमाओ बस।
कहाँ गया?
ये रहा, सबका नाम लिखा है, क्या बात है। आपके नाम के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है भाईजान।
उर्फियत भी लिखते हैं, देखो ये अम्मी के नाम के आगे बीवी लिखा हुआ है।
अम्मी का असली नाम तो देखकर मैं चौंक गया था, आफाक।
अब्बा कहते थे आफाक खातून।
जनाब, सुनने में आया है कि हमारा नाम भी अखबार में छपा है, देखिए देखिए। अरे वाह भाई वाह, खुदा का शुक्र है कि मरने से पहले ही अपना नाम अखबार में आ गया, लगता है।
अरे ये तो शुरुआत है भाई,
आहिस्ता आहिस्ता हम भी मशहूर होते जा रहे हैं।
बहुत जल्दी है क्या तुमको?
अरे अरे अरे, ये मुझे देना, जाकर जरा रोब जमाऊंगा।
रोब जमाना है?
हाँ भाई, बीवी को दिखाना है ताकि पता चले कि मैं भी कुछ हूँ।
उठो बेटा और बिस्तर समेटने में मेरी मदद करो।
आपने तो कहा था अब हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये मेहमान नवाजी कैसी हो रही है?
हम कहा उनसे मिलने जा रहे हैं, वो हमसे मिलने आ रहे हैं। मेहमान खुदा का हबीब है, मेहमान की बेइज्जती करना खुद अपनी बेइज्जती है, हमारी इज्जत इससे पामाल होगी।
ठीक है, लेकिन मुझे ना पुकारिएगा, मैं उनके सामने नहीं आना
चाहती। मुझे पागल कर डाला तुमने। ठीक है, मैं नहीं बुलाऊंगी तुम्हें। इन बातों के बजाय यहाँ आकर मेरी मदद करो कि ये चादर समेट जाए, अब तो मेरी कमर भी टूट चुकी। तुम्हारे मामू आए हैं, जाओ दरवाजा खोलो।
कहीं वो लोग ना हो।
नहीं बेटा, डरो मत, वो इतने भी वक्त के पाबंद नहीं है जो अभी आ जाए। जाओ बेटा। अरे मेरे माबूद।
कौन है? अस्सलाम वालेकुम मामू जान, आइए।
वालेकुम अस्सलाम बेटा।
सलाम नीलूफर। बाबा जान चलिए अंदर।
तुम चलो पहले।
कॉन्ट्रैक्ट किया है? मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत भी किए हैं या नहीं?
परेशान मत करो मिर्जा, जो मेरा मूड खराब है।
जरा एक नजर अपने पैरों के नीचे टाइल्स पे भी डालो, उसको इतना घिस डाला है कि बिल्कुल ऐना बन चुकी है, जरा देखो तो।
मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि चलो इस आदमी बकवास कर ली, ये फूफी जान को क्या हुआ, क्यों उसके दबाव में आ रही है? सीधे सीधे कह देती मैं अपनी बेटी का जनाजा भी तुम्हें नहीं दूंगी।
खुदा ना खास्ता तो कहो, कोई ना कोई मसलहत जरूर होगी।
कैसी मसलहत? नहीं मिर्जा, कोई मसलहत नहीं।
जी नहीं, इंसान जब नौजवान होता है तो हर काम उसके नजर में बड़ा आसान होता है, लेकिन जब वो सिन रसीदा हो जाता है तो सीधे रास्ते पर भी घूम घाम के जाता है, यानी दूर के रास्ते वो अख्तियार करता है। क्यों? इसलिए कि बेहतर नतीजे तक पहुंच सके, यानी आकेलाना अंदाज से आगे बढ़े। तो बेटा तुम भी जरा ठंडे दिलो दिमाग के साथ बैठे रहो।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहां जाऊं। घर जाऊंगा तो मुझे अम्मी इस हाल में देखेंगी तो घबरा जाएंगी। भाईजान के यहाँ जाने का बिल्कुल
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज रात मेरे ही पास रुक जाओ, दाल गोश बनाया है, वो भी बहुत ही लजीज, बिल्कुल फर्स्ट क्लास।
खाना खाने की किसे परवाह है?
मिर्जा के हाथ का दाल गोश छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तुम भी इतने नखरे ना करो। अरे
जो गुजर गया वो गुजर गया। एक साहब कहते थे जो पुरानी बातों उलझा रहे, आपको नहीं कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, वो पागल है। और आने वाले कल की किसी को भी खबर नहीं है, तो आज की जिंदगी को जियो।
आप कहते तो ठीक है, लेकिन ये बात उनके लिए है जो अपनी पिछली जिंदगी की हसरत लिए बैठे हैं और उससे दर से इबरत नहीं लेते। माजी गुजर गया दुरुस्त, लेकिन यकीन जानिए कि उसके असरात हालिया और आइंदा जमाने पर जरूर पड़ते हैं।
क्या बात किया आपने, मैं भी बस यही कहना चाह रहा था। मेरे चचा मरहूम ने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, खुद ही उन्होंने नुकसान भी उठाया इसका और अब चले गए इस दुनिया से। अब वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन मुझे एक शिकायत है इनसे।
शिकायत? कैसी शिकायत?
शिकायत इसलिए कि मरहूम के बाद आप रिश्तेदारी पूरी तरह भूल गईं और गैरों को तरजीह देने लगी हम पे। शायद आप बिल्कुल भूल चुकी हैं कि नीलूफर का हमसे खूनी रिश्ता है, हमारा खून है वो।
नीलूफर तुम्हारा ही खून है दुरुस्त, वो तुम्हारी चचाजात बहन भी है, ये भी दुरुस्त इनकार नहीं करते, लेकिन बेटा रिश्तेदारी निभानी भी तो होती है, कुछ इल्फत
मोहब्बत, कोई दिलचस्पी, कुछ आना जाना, कुछ तो हो।
आखिर चचा जान, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? आखिर सलाम हो तब जवाब होता है, आना जाना दोनों तरफ से होता है। जब हमारी चची साहिबा कभी हमारी तरफ आई ही नहीं, तो फिर हम और हमारे दूसरे रिश्तेदार क्या आ सकते हैं, कैसे आएंगे यहाँ?
बहुत अच्छे, तुम्हारी भी क्या क्या तवक्कुआत हैं खुदा की कसम। चूंकि तुम मेहमान हो इसलिए एहतराम करती हूँ, लेकिन अब जब तुमने गिला शिकवा शुरू कर दिया है तो मुझे भी कहने दो। कहने दो कि उस ठंडी स्याह सर्द रातों में जब मैं अपनी दूध पीती बच्ची को लेकर उस बर्फ बारिश में तुम्हारे बाप वाले घर पर आई थी और अपने शोहर को ढूंढ रही थी, जो पता नहीं तुम लोगों ने उनको कहाँ छुपा हुआ रखा था, और तुम लोगों ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। बताओ और बताओ, जब नीलूफर के बाप का इंतकाल हुआ तो तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस घर को और इस बच्चे को मुझसे छीन लो। हाँ जलाल मियाँ, तुम्हें इस बात का हक है कि पुरानी बातें भूल जाओ, क्योंकि ये बातें इतनी भयानक और दर्दनाक है कि तुम जैसे आदमी भी इस पर नजर डालने से कतराते हो। लेकिन मैं उन्हें नहीं भूल सकती, हरगिज नहीं भूल सकती।
अरे क्या कर रही हो नीलूफर, अपने नाखून क्यों कुतर रही हो? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। बकौल फूफी जान के जहाँ बेरी होगी वहां ढीले तो आएंगे ही। तुम इन लोगों को जितना जी चाहे बातें करने दो, कोई फायदा नहीं है।
वो लोग क्या कह रहे थे?
जलाल साहब अपनी पूरी पैंतरेबाजी कर रहे हैं कि शायद कहीं से फंसा लें, लेकिन हमारी फूफी जान तो उनके जाल में फंसने की नहीं है।
ये भी नहीं मालूम कि ये लोग मुझे किसके पल्ले बांधना चाह रहे हैं।
अभी तक तो फूफी जान ने ऐसी बातों को उन्हें मौका नहीं दिया, अभी इब्तदाई मरहले ही पर रुके हुए हैं।
नरगिस बताइए ना क्या कह रहे थे?
हाय हाय कुर्बान जाऊं तुम पर। देखो तो जरा, देखो तो इसका चिड़िया सा दिल कैसे जोर जोर से धड़क रहा है, सातवें आसमान तक सुनाई दे रही है। चलो उठो अब, हमारे लिए चाय बनाओ, मेरे लिए भी और मेहमानों के लिए भी, ठीक है? उठो अच्छी बच्ची, उठो।
बहरहाल पुरानी अनकही बातें जो दिल में खटक रही थी उन्हें कह देना ही बेहतर था, ताकि दिल पर जो बोझ था हल्का हो जाए। मिठाई लीजिए।
खुदा आपके वालिदैन की मगफरत करे अली चचा, जो चीज़ मुझे यहाँ खींच लाई वो बस यही बात थी, वरना ये बोझ मैं अपने कंधे पर लिए क़यामत तक फिरता रहता। कुछ भी हो, मैं और चची जान नीलूफर की वजह से एक ही खानदान और कबीले से हैं, है नहीं चची जान?
नहीं जलाल मियाँ, आपका अपना खानदान है और हमारा खानदान अलग है।
ये तो फिर वही सारी बातें शुरू हो गई पहले वाली।
मैंने खुद अपने शोहर से क्या अच्छाई देखी है जो उसके खानदान से देख सकूं? खुदा की कसम अगर मेरे भाई और उनके बच्चे नहीं होते तो मैं और नीलूफर कब के मर चुके होते।
तो इसीलिए आपके भाई जान ने भी ये जुरत की कि मेरी चचाजाद बहन को मुफ्त में लेके जा रहे हैं अपने साथ। अब रिश्तेदारी, रस्म और रिवाज सब तो गए भाड़ में, आखिर कुछ बचा ही नहीं।
क्या मतलब है?
मतलब ये कि मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो चार पैसे जो आपके भीखमंगे रिश्तेदारों ने मेरी चचाजाद बहन पे खर्च किए हैं उससे हमारी बहन को हथिया लें।
भीखमंगे तो असल में वो लोग हैं जिनको जैसे ही किसी चीज की भनक मिलती है धड़ से हाजिर हो जाते हैं।
नहीं, अब ये शिकायत का मसला नहीं है, ये बोझो कीना है। अब ये दुश्मनी है। तो मैं बता देता हूं, अगर आपने इसका निकाह करवा दिया है तो करवा दिया हो। नीलूफर पर हमारा हक है और हम अपना हक बर्बाद नहीं होने देंगे। हमको पता है कैसे इसकी शादी करना है। कहाँ
बेहतर होगा कि आप तशरीफ ले जाइए जनाब। ये तो आप समझ गए होंगे कि माजी सिर्फ गुजर नहीं जाता बल्कि अपने इसरार छोड़ जाता है। लेकिन जहां तक उन भिखमंगों की बात है तो बेहतर होगा कि एक नजर अपने आप पर डाल लीजिए, ताकि समझ सकें कि इसका सही मिसा कौन है।
बाबा जान,
حیف ہوا کہ آج رات، لیکن بہرحال مجھے خوشی اس بات کی کہ میری جرات کی ایک جھلک آپ نے دیکھی اور آئندہ اور بھی دیکھیں گے۔
ہم بھی دیکھ لیں گے۔ ہاتھ کنگن کو آسی کیا، تشریف لے جائیے۔
یہ تو خیر پتہ ہی چل جائے گا۔ چلو اٹھو، چلو چلتے ہیں، ان کو رشتے دار سمجھ میں نہیں آتے۔
خدا کے لیے آپ لوگ ناراض مت ہوئیے گا، معاف کیجیے گا اگر آپ کو دکھ پہنچایا ہو۔
مہین بیگم۔
جی جی
مہین بیگم، آپ بھی ذرا جلدی سے چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ سارے عتاب آپ پر نازل ہو۔
چلتی ہوں،
خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
اور اب پہاڑ کے نیچے آیا ہے۔
تو بگی آن تمومه، همین که اول آخر تو هستی، به محتاج تو محتاجی حرومه.